ओम शांति। सभी मिलकर बोलेंगे ओम शांति। आज के राजयोग के प्रथम सत्र में हम योग का आधार आत्मचिंतन के बारे में समझेंगे। आत्मचिंतन का अभ्यास करने के लिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हम कौन हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे हम शरीर को देखने के अभ्यासी हैं, हम आईने में अपना मुंह देखते रहते हैं और अपने बालों को, गालों को ठीक करते रहते हैं, परंतु हमें शरीर को देखने का अभ्यास है, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को जब तक आत्मदर्शन नहीं करेंगे, हमें अपने आप को, आत्मा का चिंतन करने का, आत्मा का सुधार करने का अभ्यास नहीं है। मनुष्य को पहली जिज्ञासा ये हुई कि को हम, मैं कौन हूं। इसलिए सभी धर्मों में इस बात का महत्व है, नो थाई सेल्फ। खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। हमारे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने एक काव्य में ये गाया हुआ है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्ज्वल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है, अंतर जगत क्या है, हम जानते नहीं हैं। मनुष्यात्मा की ये जिज्ञासा को हम, उसका प्रति उत्तर देने के लिए विविध ऋषि मुनियों ने इसका चिंतन किया और यही हरेक ने अलग अलग उत्तर दिया कि हम कौन हैं। उसके उत्तर में यही जवाब दिया कि को हम, उसका उत्तर दिया सो हम, शिवो हम, ब्रह्मो हम। वैरायटी उत्तर सबने दिए, उसी के आधार पर हरेक ने यहां अपने अपने मत के आधार पर अलग अलग धर्म स्थापन किया, संप्रदाय बनाए। हरेक ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की। हम मनुष्यात्माओं को इसका सही उत्तर स्वयं परमात्मा देते हैं। जब कलियुग के अंत समय ब्रह्मा तन में दिव्य प्रवेश करते हैं, तब शिव परमात्मा सही उत्तर हमें देते हैं। हम वो सही उत्तर को आज समझेंगे। हम जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे परिचित होना चाहते हैं। आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? उसके उत्तर में हम अपना दैहिक दुनियावी परिचय ही एक दो को बताते हैं। हम अपना अंडरस्टूड है कि हम अपने आप को देह समझते हैं, तो हम देह भान में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, इसलिए ही हम अपना शरीर का जो सांसारिक परिचय है वो ही एक दो को बताते हैं। हम अपने को शरीर के नाम, रूप, रंग, आयु के अभिमान में रहते हैं। हमें अपने नाम की कॉन्शियस पता है, मैं कौन बोल रहा हूं। हमें अपने रूप रंग का अभिमान रहता है, मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं सुंदर हूं, साधारण हूं। हमें अपने नाम रूप का अभिमान होता है। जब हम मॉर्निंग में जब ड्रेसअप होते हैं, मेकअप करते हैं, तो हमें अपने रूप रंग की कॉन्शियसनेस रहती है। हमें अपनी आयु का भी भान रहता है कि मैं युवा हूँ, फलाने बूढ़े हैं। हमें अपनी आयु की कॉन्शियसनेस रहती। तो शरीर के नाम, रूप, रंग, आयु का अभिमान हमें रहता है। हम संबंधों के अभिमान में कुछ कर्म करते हैं। मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने की सास हूं, मैं फलाने की मिसेस हूं। हमें अपने संबंधों का अभिमान में आकर व्यवहार करते हैं। हमें अपने एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और डेजिग्नेशन का अभिमान रहता है। मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, आईटी पढ़ा हुआ हूँ। हमें अपने ऑक्यूपेशन का अभिमान रहता है कि मैं फलानी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं वहाँ मैनेजर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। हमें अपने डेजिग्नेशन का अभिमान रहता है कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। हमें अपने पद, प्रतिष्ठा, पढ़ाई का अभिमान रहता है। और भी अधिक हम सोचे तो हमें अपने धर्म की कॉन्शियसनेस रहती है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बौद्धिस्ट हूँ। हमें अपने धर्म का अभिमान रहता है। इस प्रकार अपने जाति और ज्ञाति का अभिमान रहता है। हम बनिया है, ब्राह्मीन है, हम राजपूत हैं, हम अगड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं। इस प्रकार से हमें अपनी जाति और ज्ञाति की कॉन्शियसनेस रहती। हमें अपने कुल का अभिमान रहता है। हम उच्च कुल के हैं, ऊंचे खानदान के हैं, हमारे बाप दादा इस खानदान के थे, तो हमें इसका अभिमान रहता है। हमें अपने प्रांत की कॉन्शियसनेस, भाषा की कॉन्शियसनेस रहती है। आप देखेंगे बॉर्डर एरिया में एक दो जिस बॉर्डर पर प्रांत मिलते हैं वो भाषा के कितने झगड़े हैं। हम मराठी हैं, हम तमिल हैं, तेलुगु हैं, बंगाली हैं, इस प्रकार से गुजराती हैं, मराठी हैं। हमें अपनी भाषा की बहुत कॉन्शियसनेस रहती है। हमें अपने नेशनलिटी की भी कॉन्शियसनेस, हम चाइनीज है, हम इंग्लिश है, हम अमेरिकन है, जैपनीज है, हमें अपनी नेशनलिटी की भी कॉन्शियसनेस रहती। तो इस प्रकार देह के अभिमान में हम रहते हैं, खुद को देह समझते हैं, इसलिए हम देह का ही परिचय एक दो को बताते हैं। हमारा जीवन देह अभिमान युक्त और दुनियावी बन गया है। हम सांसारिक बन गए हैं। हमारा जीवन भोगवादी और भौतिकवादी बन गया है, क्योंकि हम इस देह के द्वारा दैहिक दुनिया से जुड़ जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन देहाभिमान युक्त और दुनियावी बन गया है। यहां आप साइलेंस में आए हैं और आप शांति से अपने आप के बारे में सोच सकते हैं कि क्या हम शरीर हैं। शरीर क्या है? मेडिकल साइंस ने हमें बताया है कि शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि ये शरीर तो प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ है, जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी। ये प्रकृति के पंच महाभूत हैं। इन पांच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ देते हैं, शरीर को हम अग्नि दाह देते हैं, तो संस्कृत कहा जाता है कि पंचत्वम गतः, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पुनः पांच तत्व में मिल गया, जिसको हम साधारण शब्दों में कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। तो शरीर तो मिट्टी है, जब चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये डेड हो जाता है। इसलिए शरीर और आत्मा मिलाकर मनुष्य आत्मा जीवात्मा कहा जाता है। अब शरीर भौतिक शक्ति है और आत्मा चैतन्य शक्ति है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम मनुष्य आत्मा, ह्यूमन बीइंग, जीवात्मा कहते हैं। तो भौतिक शक्ति क्या है? देखो, यहां देखने में बल्ब आ रहा है कि ये बल्ब प्रकाश दे रहा है, ये ट्यूब लाइट दे रही है, पंखे घूम रहे हैं। तो देखने में साधन आता है, परंतु सत्य क्या है? प्रकाश हीटर गर्मी दे रहा है, ग्राइंडर मशीन चल रही है, पर वास्तविकता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में पंखा चल रहा है। इसके पीछे इलेक्ट्रिक पावर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक पावर नहीं दिखाई देता है, देखने में ये बल्ब ट्यूब ये पंखा आता है, परंतु इनको इनके द्वारा प्रकाश के रूप में, ठंडी के रूप में, गर्मी के रूप में प्रकाश बिजली की शक्ति काम कर रही। तो इसी प्रकार हम चैतन्य शक्ति मन के द्वारा आत्मा सोचती है, विचार करती है। हमारी विचार करने की शक्ति को मन कहा जाता है। हम सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं, हम कर्म करते हैं, हम हरेक कर्म का अनुभव हमें होता है, हमें इच्छाएं होती है, स्मृति रहती है। कोई सुंदर स्थान को आप देख करके आते हैं, आंखों के सामने अभी उस स्थान हम नहीं देख रहे हैं, पर देखी हुई सुंदरता हमें बार बार याद आती है। कोई अच्छा पदार्थ आप खाते हैं, खाकर मुख से पदार्थ समाप्त हो गया है, अभी मुख में वो चीज नहीं है, पर जीभ द्वारा लिया हुआ स्वाद, फिर पाने की इच्छा किसको होती है? चैतन्य शक्ति आत्मा को होती है। हमें दूसरों के दुख दर्द को देखकर हमें इसके प्रति सहानुभूति होती है, सिंपथि होती है, दया रहम आता है। ये सहानुभूति चैतन्य को होती है। दुख का अनुभव चैतन्य को होता है। तो ये हम सोचते हैं, इच्छा होती है, कर्म करते हैं, अनुभव होता है, ये सब चैतन्यता की निशानी है। तो आत्मा और शरीर चैतन्य शक्ति और मानव शरीर मिलकर जीवात्मा मनुष्यात्मा कहा जाता है। यहां चित्र में बीच में स्त्री पुरुष दिखाए हैं। हम स्त्री हैं ये गलत है, हम पुरुष हैं ये गलत है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, लिंग भेद है। ये शरीर देखकर हम कहते हैं कि बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा हुआ, ये शरीर भेद है। इस स्त्री शरीर को या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहा जाता है। इसलिए शरीर की तुलना की गई है, आत्मा और शरीर की कंपैरिजन की गई है कार और ड्राइवर के साथ। शरीर कार के समान है, आत्मा उसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान है। जैसे एक ड्राइवर दिन रात गाड़ी चलाता है, लेकिन वो अपने आप को ड्राइवर या गाड़ी नहीं समझता है। उनको क्लियर है कि मैं ड्राइवर अलग हूं, मेरी कार है, मैं कार नहीं हूं। ड्राइवर का खाना पीना अलग है, मोटर कार को पेट्रोल डीजल चाहिए वो अलग है। तो चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान है और ये शरीर मोटर कार है। मकान और मकान मालिक की तुलना की है। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक कहूं। अभी इस हॉल में हम बैठे हैं, लेकिन हम हॉल अलग है, हम अलग हैं। ये सोफा कुर्सी पर आप बैठे हैं, अपने आप को अगर आप सोफा कुर्सी से अटैच हो जाते हैं और कुर्सी सहित चलना चाहें तो ये मुश्किल होगा या सहज होगा? क्या होगा? मुश्किल होगा ना। परंतु जैसे ही आप उससे अलग डिटैच होकर उठते हैं तो इजीली उठकर जा सकते हैं। जब हम देह से, देह संबंधों से, दैहिक प्रवृत्ति से अटैच हो जाते हैं तो जीवन हमें बोझ लगता है, टेंशन लगता है। पर हम इस देह से डिटैच हो जाते हैं, दुनियावी कारोबार से डिटैच रहते हैं, देह संबंधों से न्यारे रहते हैं, तो हम हल्कापन, लाइट महसूस करते हैं। इसीलिए वो सारी प्रवृत्ति परिवार को संभाल सकते हैं। शरीर एक ड्रेस है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर हैं, आत्मा एक्टर हैं। हर घड़ी शरीर द्वारा हम एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं। अगर कोई हीरो एक्टर कुली का ड्रेस पहनता है और कुली का रोल प्ले करता है, क्या हम उसको कुली कहेंगे? हाँ, नहीं। हीरो एक्टर है, वैरायटी पार्ट प्ले करते हैं। वो हमारा शरीर ड्रेस है, हमारा रोल हम प्ले करते हैं, पर इससे कोई भी हीरो कुली नहीं बन जाता है। कोई राजा बनता है, कोई इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, कोई शराबी बनता है, परंतु वो इससे इंस्पेक्टर या राजा नहीं बन जाता है। अगर घर जाकर वो कहे मैं राजा हूं, मेरे ऑर्डर पर चलो, तो घर वाले कहेंगे तुम फिल्म में राजा थे, घर में राजा नहीं हो। यहां तो साधारण व्यक्ति हो। तो शरीर रूपी ड्रेस हम जन्म जन्म बदलते रहते हैं, और इस जन्म में भी स्त्री शरीर या पुरुष शरीर धारण कर आप माता का, पिता का, बहन का, भाई का, बेटी का, बेटे का रोल प्ले करते हैं, परंतु इससे आप शरीर नहीं हो जाते हैं, स्त्री शरीर या पुरुष शरीर नहीं हो जाते। शरीर सिंपली ड्रेस है, वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। माता पिता के सामने हैं, आप बेटा बेटी हैं, आप एक दो के सामने हैं, भाई बहन हैं या पति पत्नी हैं, अपने बच्चों के सामने हैं, आप माता और पिता हैं। ये वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। आप सामाजिक मीटिंग में जाते हैं एक सिटीजन के रूप में, आप ऑफिस जाते हैं, बॉस हैं, एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर हैं, ये रोल प्ले करते हैं। पर मैं मैनेजर हूं ऐसा नहीं सोचना है, मैं इनका पिता हूं ऐसे विचार नहीं करना है। हमें अपने आप को आत्मा एक्टर समझना है। इस वर्ल्ड ड्रामा में हम आत्मा एक्टर हैं, और हरेक जन्म में शरीर रूपी वैरायटी ड्रेस पहनते हैं और वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। यहाँ गीता का, गीता शास्त्र में जो बताया है, आत्मा को रथी कहा है, शरीर को रथ कहा गया है। आत्मा को देही कहते हैं, शरीर को देह कहते हैं। आत्मा को पंछी कहा है, शरीर को पिंजर कहा है। हम कहते हैं ना, आत्मा पंछी उड़ गया, शरीर का पिंजर खाली हो गया। आत्मा को हंस कहते हैं, शरीर को पिंजर कहते हैं। तो इस प्रकार शरीर स्थूल है, आत्मा चैतन्य है। हम अपने को आध्यात्मिक ज्ञान का, स्वयं के बारे में प्रथम सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु चमकता हुआ चैतन्य सितारा, खुद को बिंदु ज्योति आत्मा समझना है, आत्मा स्मृति में रहना है, सोल कॉन्शियस बनना है, आत्म भान में रहना है। जितना ये अभ्यास आप करेंगे, आपका आध्यात्मिक फाउंडेशन मजबूत होगा, आपका जो आध्यात्मिकता के रूट्स है फाउंडेशन के, वो आत्म स्मृति में समाया हुआ है। जब आत्म स्मृति भूल जाते हैं, तब विस्मृति में देहाभिमान में हम आते हैं और बॉडी कॉन्शियस बनते हैं। आत्मा शरीर धारण करने के बाद बिंदु है, न कि ट्रायंगल, स्क्वायर, षटकोण या अष्टकोण नहीं है। अति सूक्ष्म आकार किसको कहा जाता है? बिंदु को कहा जाता है। इसलिए आत्मा चैतन्य शक्ति है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। हम कह सकते हैं ब्रेन बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है, आत्मा बॉडी का कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक के बीच रहकर शरीर को चलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच आत्मा निवास करती है। उनको सरफेस पॉइंट यहां ब्रुकुटी कहते हैं, जहां हम तिलक लगाते हैं। हम हरेक जब कोई धार्मिक प्रसंग होता है या मांगलिक प्रसंग होता है, हम भाई बहनों को, बच्चों को, सबको तिलक करते हैं। हम अक्षत कुमकुम लगाते हैं। धार्मिक प्रसंगों में हम अक्षत कुमकुम लगाते हैं, पर इसका अर्थ हम नहीं समझते हैं। ब्रुकुटी में ये तिलक लगाना आत्मस्मृति का प्रतीक है। अक्षत माना अविनाशी, अविनाशी आत्मा को ज्ञान रंग से रंगना है। केवल बाह्य अक्षत कुमकुम लगाने से धारणा नहीं होती है। हम आत्माएं ज्योति बिंदु आत्मा, जितना ज्ञान रंग लगाते हैं, उतना वो अपना जीवन की धारणाओं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इस प्रकार मस्तक में आत्मा जब सोचती है तो ब्रेन स्टिम्युलेट होता है, और वो स्टिम्युलेशन वैरायटी अंगों पर पहुंचकर उस अंग द्वारा हम कर्म करते हैं। शरीर की 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुख है और हाथ है। ये 5 कर्मेंद्रियां डोर्स ऑफ नॉलेज ज्ञानेन्द्रिया भी कहा जाता है, जिनके द्वारा सही या गलत ज्ञान हमें प्राप्त होता है, इनको ज्ञानेन्द्रिया भी कहा जाता है। तो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सेंसेशन पहुंचता है और हम कर्म करते हैं। ये कर्मेंद्रियां शरीर से अटैच है, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुख। हम मेरा कहते हैं, माना हमारा उस पर अधिकार होना चाहिए। मेरे पर अधिकार होता है ना, तो ये कर्मेंद्रियां अगर शरीर से कट होके अलग हाथ हो जाए तो वो जिंदा रहेगा, कर्म कर सकेगा? नहीं। इसलिए आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है, कर्म फल भोगती है और कर्मों का वैरायटी अनुभव प्राप्त करती है। अच्छे कर्मों से सुख अनुभव करते हैं। अगर हम किसी को दुख देते हैं, अपमान करते हैं, तो उनको दुख फील होता है। तो ये वैरायटी कर्मों का अनुभव होता है। तो शरीर माना पांच कर्मेंद्रियां, आत्मा माना तीन शक्तियां। आत्मा तीन शक्तियों से चैतन्य समूह है। शरीर पांच कर्मेंद्रियों का पूरा ढांचा है, उनका समूह है आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कारों का चैतन्य समूह है। आत्मा की विचार शक्ति को, संकल्प शक्ति को, मनन शक्ति को मन कहा जाता है। मन सोचता है, कल्पना करता है, योजना बनाता है, आइडियाज क्रिएट करता है। ये मन का कार्य है। मन के द्वारा आवश्यक चीजों का चिंतन हमें करना है। हमें अपनी पढ़ाई के बारे में, घर के बारे में, धंधे के बारे में हमें सोचना है जरूरी। लेकिन क्या हम सिर्फ जरूरी नेसेसरी थॉट्स ही करते हैं? नहीं, हम अनावश्यक, बिन जरूरी, बिन जिम्मेवार होने के कई व्यर्थ विचार करते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, पर चिंतन करते हैं। कितना व्यर्थ चिंतन हमारा चलता रहता है। तो ये पर चिंतन आपस में जब हम मिलते हैं, तेरी मेरी करते हैं, कितनी व्यर्थ बातें सोचते हैं, सांसारिक चिंतन भी करते हैं। अब यहां आपको ये स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन करना सीखना है। जब आपने ये समझ लिया कि आप चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा है, तो आपको आते जाते उठते बैठते बाहर यहां से निकलते चलते फिरते आत्मचिंतन का अभ्यास करना है। मन में अनेक विचार आते हैं, क्या सभी विचार उसी क्षण कर्म में आते हैं? नहीं, आप निर्णय करते हैं कि फलाना विचार कर्म में लाना है। आपको यहां आने का हमारे बहन भाइयों ने, बीके भाई बहनों ने निमंत्रण जब दिया तो आपने सोचा जाएं न जाएं क्या करें, फिर आपने निर्णय किया कि चलो ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है, चलते हैं वहां जाकर के देखते हैं, क्या सिखाते हैं वो देखेंगे। तो ये आपने निर्णय किया कि हम चलते हैं, तो विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। आत्मा की निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। हम बुद्धि द्वारा निर्णय करते हैं ये राइट है या ये रॉन्ग है। जो राइट है वो कर्म में लाना है, तो बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। हम कह सकते हैं कि जब हमारी बुद्धि पतित बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन जाती है, तब हम गलत निर्णय करते हैं। इसको कहते हैं इसकी बुद्धि मारी गई है, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो बुद्धि जब पतित बन जाती है, भ्रष्ट बन जाती है, तो हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं और किए हुए निर्णय कर्म में नहीं ला पाते हैं। इसलिए हम आरती में, भजन में, प्रार्थना में गाते रहते हैं, भगवान को कहते रहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। इतनी बुद्धि शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। जरूर हमारा विश्वास हिल जाता है, इतनी शक्ति हमारे में नहीं है, तो हमें अब बुद्धि का योग परमात्मा से लगाना है। कल मॉर्निंग के द्वितीय सत्र में आप ये परमात्मा का परिचय प्राप्त करेंगे और फिर आप योग लगाना सीख जाएंगे। परिचय मिलने के बाद हम उनको याद कर सकते हैं, उनकी स्मृति में रह सकते हैं। तो बुद्धि से निर्णय करने के बाद जो कर्म हम करते हैं, हर कर्म का प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता रहता है। अच्छे बुरे साधारण जो भी कर्म हम करते हैं, कर्म का प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता है, संचित होता है। जो बार बार कर्म हम करते हैं, गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं, जो कर्म बार 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 हम करते हैं, वो आत्मा का प्रभाव दृढ़ बन जाता है, उसको स्वभाव संस्कार हम कहते हैं। तो विचार कर्म का बीज है, कर्म ही संस्कार बनकर आत्मा में रिकॉर्ड होता है, और जैसे संस्कार ऐसे ही विचार, इच्छाएं, स्मृति हमें फिर फिर होती रहती हैं। ये इनर साइकिल है, विचार कर्म संस्कार, ऐसे ही विचार हमें आते रहते हैं। अगर कोई बात का व्यसन है, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, तो फिर उसका सेवन करने की इच्छा हमें होती है। तो इसलिए आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है, तब इस भौतिक जगत का कुछ भी इकट्ठा किया धन साधन हम साथ नहीं ले जाते हैं, पर जीवन भर किए हुए कर्म का प्रभाव संस्कार के रूप में हम साथ ले जाते हैं। उन्हीं संस्कारों के आधार पर आत्मा की गति होती है, और फिर से नई जीवन स्थिति हमें प्राप्त होती है। अगर बुरे कर्म हमने किए हैं, गलत कर्म हमने किए हैं, कोई भी विकार के वश पाप कर्म किए हैं, तो हमारी गति दुर्गति होती है, और ऐसे ही चरित्रहीन संस्कारहीन गरीब परिवार में हमें जन्म मिलता है। और अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, शुभ चिंतन किया है, उससे जो शुभ संस्कार बनते हैं, सच्चरित्रवान बनते हैं, और वो संस्कार लेकर आप जाएंगे तो सच्चरित्रवान परिवार में, संस्कारी परिवार में, शाहूकार घर में जन्म लेते हैं। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है, ऐसा ही परिवार हमें प्राप्त होता है। अभी तो कर्म शुरू भी नहीं हुए, पर हमें ऐसा परिवार, जीवन की स्थिति, पूर्व के कर्मों का हिसाब लेकर जाते हैं, संस्कार रूप में उनके आधार पर प्राप्त होता है। इसलिए संस्कारों को सुधारना है तो कर्म व्यवहार को सुधारना है, और कर्म व्यवहार को हमें सुधारना है तो विचारों को बदलना है। हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। हम प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ, सबसे नीचे आसमानी रंग से ये साकार मनुष्य लोक बताया है, स्थूल वतन बताया है, फिजिकल वर्ल्ड बताया है। ये दुनिया भी 5 तत्वों की बनी है, सूर्य चांद सितारों से बने हैं। इस भौतिक जगत में हम पांच तत्व का बना शरीर धारण करते हैं, परम धाम से आत्मा रूप में आकर गर्भ में प्रवेश करते हैं और वो ही जन्म लेते हैं तो वो शरीर का डेवलपमेंट होता है। सबसे ऊपर लाल रंग से जो आत्माओं का घर बताया है तो ये गोल्डन रेड कलर छठवां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व को बताया है। ये ब्रह्म तत्व है, लोक है, उसको भगवान हम नहीं कह सकते। इस ब्रह्म तत्व में ज्योति बिंदु आत्माएं नंबरवार रहती हैं और सबसे ऊपर परम आत्मा परमात्मा को बताया है क्योंकि परमात्मा का ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनको निराकार कहते हैं। तो ये ब्रह्म तत्व हमारा असली घर है जिसको ब्रह्मलोक, परलोक, मूल वतन, परम धाम, शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड इसको कहते हैं। इस परम धाम में हम ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप में रहते हैं। आत्मा इस मनुष्य लोक में, साकार लोक में, इस फिजिकल वर्ल्ड में आकर शरीर धारण कर कर्म करती हैं, इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। जब परम धाम में हम हैं, हमारे मूल असली गुण पवित्रता और शांति है। जब सत्य ज्ञान हमारे अंदर समाया हुआ है तो इससे हम पवित्र रहते हैं और पवित्रता से शांति और प्रेम आता है। इस शांति और प्रेम से सुख और आनंद मिलता है। तो हमारे मूल ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, ये मूल हमारे गुण हैं और छह के छह गुण धारण जब हो जाते हैं, आत्मा में इमर्ज हो जाते हैं तो आत्मा शक्तिशाली पावरफुल बन जाती है। तो हमारी ओरिजिनल नेचर ज्ञान शांति, ज्ञान पवित्रता, शांति प्रेम सुख आनंद है और वो ही कर्म में आ जाते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ये है हम आत्माओं का वास्तविक परिचय। अभी हम 5 मिनट आत्मा चिंतन का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित कमर सीधी करके बैठ जाएं। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे। काफी सोफा कुर्सियां खाली पड़े हैं, इस पर जाके बैठ जाएं। एक दो को टच करके ना बैठे क्योंकि नहीं तो हरेक के वाइब्रेशन आपको हिलाते रहेंगे। आप जो भी
डायरी पेन हैंडबैग मोबाइल वाटर बॉटल लेके बैठे हैं इनको कुर्सी के नीचे रख दें, अलग कर दें आपसे, गले में ये थैला डाल के न बैठे, डिटैच रहे। आपको सोफा के बैक का कुर्सी के बैक का सहारा लेना है तो लीजिए, परंतु सपोर्ट उसको स्ट्रेट कमर करके बैठिए। हमें खुद से बातचीत करनी है, खुद को समझाना है। ये वार्तालाप है, डायलॉग है आपका खुद के बारे में। तो जब हम बातचीत करते हैं आंखें नॉर्मल खुली रखते हैं। आज के आत्मचिंतन के अभ्यास में आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें नॉर्मल खुली रखनी है। आप मेरी ब्रुकुटी में देखेंगे, मुझे आत्मा समझेंगे और आप खुद अपने आप को भी आत्मा बिंदु समझेंगे। आंख बंद करके नहीं बैठना है, हमें भक्ति में प्रार्थना करते आरती गाते भजन करते आंख बंद करने का अभ्यास है। परंतु राजयोग का ये आत्मचिंतन सेल्फ रियलाइजेशन का अभ्यास आंखें नॉर्मल रखकर खुली रखते हुए करना है। मैं कमेंट्री दूंगी, आप को मुख से रिपीट नहीं करना है। मैं बोलूं और आप बोले ऐसा नहीं, मैं जो सजेशंस थॉट आपको गाइड करने के लिए दूंगी कि आपको मन ही मन कैसे आत्मचिंतन करना है, तो आप इसको रिपीट नहीं करेंगे आवाज से, परंतु मन में ही मन के द्वारा रिवाइज करेंगे और उसका अर्थ समझकर रियलाइज करके उसको फील करेंगे, अनुभव करेंगे। मैं एक आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं आत्मा इस भौतिक जगत में आकर शरीर धारण करती हूँ और शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। इस विश्व नाटक में मैं आत्मा भीतर हूं, शरीर रूपी ड्रेस धारण कर, वैरायटी रोल्स प्ले करती हूं। इसलिए यह दुनिया मेरे लिए कर्म क्षेत्र है। सृष्टि एक रंगमंच है। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार सूर्य चांद सितारों से भी आगे परम धाम है, जिसको परलोक ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। उस ब्रह्म तत्व में हम ज्योति बिंदु आत्माएं और हमारे पारलौकिक पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित रहते हैं। मैं आत्मा असली स्वरूप में अपने मूल गुणों का अनुभव करती हूं। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूं, आत्मा स्वरूप में स्थित होती हूं, मैं सही अर्थ में स्वस्थ शुद्ध आत्मा बनती हूं। शांति और पवित्रता मेरा निज गुण है। मैं सत्य शुद्ध पवित्र आत्मा शांति और प्रेम के अनुभव में रहती हूं। सुख और आनंद को फील करती हूं। मैं शक्तिशाली बन जाती हूं। आत्मभिमानी शुद्ध सत्य और शक्तिशाली आत्मा दुनिया के कोई परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आती हूं। माया का कोई भी स्वरूप, संसार की कोई समस्या मुझे हिला नहीं सकती है। मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं अचल अडोल रहती हूँ। शांति।